चलो लेट अस एग्जांपल, यदि आप एक व्यक्ति है, आप एक कर्मचारी हैं, आपका स्वभाव बहुत ही शांतपूर्ण है, आपका नेचर बहुत ही शांत है, बहुत ही सद्भावना, प्रत्येक व्यक्ति को सद्भावना की नज़र से आप देखते हैं और इसी भावना से आप सेवा का भाव रखते हैं, लेकिन आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना रखता है, आपको चीट करने का भाव रखते हैं, है ना, आपको हमेशा यू नो दे विल ट्राई टू एम्फेसाइज सो मेनी थिंग्स, और ऐसे प्लेस में आप कैसे काम कर पाओगे? और घर में भी यदि ऐसे वातावरण है, नेबर अगल बगल में, तो आप अपने शांत स्वभाव के साथ कैसे अपना प्रेम और अपना सेवा भाव को रखते हुए कैसे आप कंटिन्यू कर पाएंगे? हाउ यू विल सर्वाइव?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तालाब में और समुद्र में क्या अंतर होता है?
मैं बताऊं, तीन होता है, एक है तालाब, दूसरा नदी, तीसरा है समुद्र।
तालाब में और समुद्र में क्या अंतर होता है ये पूछ रहा हूँ।
समुद्र में जितना भी पानी हो, इतना गंभीर वो उभरा है कि वो उसका शक्ति है, वो कभी भी बाहर उछल के नहीं आएगा, कितने भी बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो जाए। तालाब क्या है, दो दिन बारिश के बाद पर उसके बाहर आ जाएगा, अपना शक्ति दिखा ले।
तो समुद्र का स्वभाव यह है कि समुद्र इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि अगर उसमें दो चार नदी बाढ़ होके अंदर आई, या दो चार नदी सूख गई, या 15 नदी सूख गई, या 15 नदी बाढ़ होकर गांव-गांव में उच्छाद करते हुए समुद्र पहुंच गई, तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र इतना विशाल है, इतना विशाल है कि नदी जैसे प्रवाह अगर भयंकर मात्रा में भी आएंगे ना, तो समुद्र को और फ्लड नहीं कर सकते हो। तो समुद्र का जो ये नेचर है ना, वो संत के हृदय की तरह है, और दुनिया के सुख दुख जो हैं वो नदियों की तरह हैं। जब सुख आते हैं तो नदियां भर भर के पानी समुद्र में छोड़ती हैं, दुख का मतलब है कि वो सूख जाते हैं। लेकिन समुद्र इतना विशाल है, उसको इतना पानी है कि कम पानी आए तो भी वो उतना ही रहता है, ज़्यादा पानी आने पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि ये दुनिया में इतने सारे रजोगुण है, तमोगुण है, इतनी सारे हिंसा है, स्वार्थ है, झूठ मूठ का ढोंग है इसके अंदर, जो नहीं है वो बताना पड़ता है, प्रेशर है सब जगह से, पड़ोसी में प्रेशर है, काम में प्रेशर है, धन कमाने में है, परिवार को चलाने में प्रेशर है, सब जगह पे टेंशन है। तो फिर इसमें ये भक्ति का जो प्रयास है वो कैसे बनाए रखें उसको, है ना? तो उसका एक में उत्तर यह है कि हमारे पास एग्जाम्पल सागर का है। अगर हम सागर की तरह बन जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास एक लाइन है, और उसको अगर आपको छोटा करना है तो क्या करना है?
बड़ी लाइन।
तो दुनिया के जो तकलीफें हैं वो उस लाइन की तरह हैं, तो फिक्स है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अगर वो सब दुनिया की तकलीफ है, वो हमको इतनी तकलीफ दे रही है अभी, दुनिया के जो कष्ट हैं वो, इससे हम लोग इतना पीड़ित हो गए हैं, तो उसको अगर आपको अपने आप को बचाना है उससे, तो आपको अपने आप के अंदर भक्ति और प्रेम का और आनंद का इतना सागर बड़ा करना पड़ेगा कि वो लाइन छोटी हो जानी चाहिए। आपके अंदर अगर शांति, सद्गुण, कृष्ण भावना अगर इतनी विशाल है कि दुनिया के कष्ट जो है तुच्छ दिखने चाहिए उस सामने उसके, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शुरू में तो हमारा सागर तो है नहीं है, तालाब की तरह ही है शुरू में, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए कि हम लोग करते रहेंगे तो वो सागर की तरह हो जाएगा एक दिन। क्योंकि तो हमारे सामने एग्जाम्पल भी है ना ऐसे साधुओं के, कि जो भी दुनिया में रहते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। वो कहते हैं ना कि मराठी में कहावत है कि उथल पाण्यास खड़खड़ाट भार फार, मतलब जो घड़ा में पानी बहुत कम होता है ना वो तो आवाज़ करता है, और जो घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है वो स्थिर रहता है। समुद्र में भी जब भी पानी बहुत कम होता है ना तभी लहरें आती है उसमें और धाड़ धूड़ आवाज़ करती रहती है, लेकिन बीच समुद्र में जाएंगे आप ना तो आपको समुद्र है लेकिन लहरें गिर रही है धाड़ करके आवाज आ रहा है, वो केवल किनारे में होता है जहाँ पर कम पानी होता है। लेकिन जब गहराई में आप जाओगे ना तो गहराई वाले समुद्र के अंदर ना बड़े बड़े देव मासा भी घूमते रहते हैं, वेल्स उसको क्या बोलते हैं आप, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मराठी में देव मासा बोलते हैं। एक और एक तिमिंगल मास मछली होती है, वो देव मासा को निकल जाती है पूरी, इतनी बड़ी होती है, उसका मुंह ही देव मासा वेल को पूरा निकल सकता है, इतना बड़ा। और वो जब भी खड़ा रहेगा ना समुद्र के ऊपर तो एक टापू बन जाता है, आप उस पर रह सकते हैं बिल्डिंग मान के, इतना विशाल शरीर होता है उसका कि आपको लगेगा कि ये जमीन है, आप आराम से कुर्सी डाल के बैठ सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, डांस कर सकते हो, इतना बड़ा शरीर है उसका तिमिंगल। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि गहराई का समुद्र जो है ना वो इतने बड़े मछलियों को भी अपने अंदर रख सकता है। अगर वो मछली किनारे में आ गए तो कुछ जगह ही नहीं होगी घूमने के लिए, लेकिन गहराई में इतनी गहराई होती है कि उसमें वो इतनी बड़ी मछली भी जो बिल्डिंग के समान है आकार में वो भी रह सकती है उसके अंदर। तो वो मछली की भी तुलना हम लोग सुख दुख से कर सकते हैं कि इतने बड़े सुख को और इतने बड़े दुख को भी अपने आप में समाने की शक्ति समुद्र के अंदर है, और इतने बड़े मछली आए या नहीं आए फिर समान भाव में समुद्र रहता है। और हमारे पास अगर जो 100 रुपये हैं और आपने 2 लोग को लेकर भाजी पाव खाया तो ख़त्म हो गए पैसे आपके, लेकिन आपके साथ में अंबानी आया हुआ है और उसने 50 लोगों को खाना खिलाया, 10 लोगों को ड्रिंक पिलाया और कॉकटेल जूस पिलाया फ्रूट्स का, आइसक्रीम भी खिलाया उसके बाद में, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके बाद में इतना है कि ये तो ऐसा ना जैसे कुछ नोटों का बंडल निकाला, एक नोट नीचे गिर गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गरीब आदमी के पास एक ही नोट है तो उसको जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी अगर वो नोट खत्म हो गया तो दुनिया जो है ना वो बदलने वाली नहीं है, दुनिया जो है वो है, दुनिया में जितने दुख है वो है, थोड़ी बहुत खुशी जो है वो है, उसका आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको चेंज खाली खुद को करना है। जैसे किसी की बीवी समझो बहुत बहुत झगड़ालू है, बहुत बहुत झगड़ा करती है, बहुत खर्चालू भी है, बहुत खर्चे करती रहती है और उसको आप बदल नहीं सकते हो तो फिर आपको ही बदलना है, या तो ज़्यादा पैसे कमाओ या तो वो खर्च करे करने दो शांत रहो, क्योंकि ज़िंदगी भर लड़ना भी ठीक नहीं है उसी बात को लेकर कि तुम बहुत खर्चा करती हो, जैसे स्वभाव है उसको अगर बदल नहीं सकते हैं तो फिर आपको बदलना पड़ेगा, आपको रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा, साधना ही उसका उत्तर है। इस दुनिया में रहना है ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इस दुनिया में रहना है तो दुनिया का बन के मत रहो, वो दुनिया का बन के रहो, या तो दुनिया में रहना है तो दुनिया में खुशी मत ढूंढो, यहां पर खुशी मत ढूंढो, यहां पर खुश रहने का प्रयास मत करो क्योंकि यहां पर खुशी का इंतजाम नहीं है। तो आप नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे तो खुश रहना ही पड़ेगा, और इधर ही खुशी ढूंढ रहे हो और बताया गया आपको नहीं मिलेगी आपको, फिर भी आप ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, तो क्या होगा, उससे निराश हो जाएंगे आप, दुखी हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपको सुखी होना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सुख खुशी नहीं मिलने वाली है। जैसे एक जोक बताते ना, किसी की एक हेयर पिन गोल्डन थी, वो डिस्को डांस में गिर गई, तो डिस्को में कैसे रहता है ना, बहुत अंधेरा रहता है, थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है, ऐसा ऐसा होते रहता है, तो डिस्को खत्म हो गया तो भी पूरे हॉल में वो लाइट था ही नहीं, एक ही जगह पर लाइट था, तो वो लाइट जहां लगाई गई वहां पर वो पिन ढूंढ रही थी, बहुत देर ढूंढी उसने पिन मिली नहीं उसको, तो मैंने उनको पूछा गया कि इधर क्यों ढूंढ रहे आप, तो कहते हैं इधर लाइट है ना इसलिए ढूंढ रही हूं, तो लाइट है इसलिए आपको वहां मिलेगा क्या, जहां गिरेगी वहां पर आपको ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको ना, जैसे कल घड़ी यहाँ पर गुम हो गई थी हमारे पेशेंट की, तो सब जगह ढूंढ के आए, लेकिन जिस सोफा पर निकाल के रखी थी उधर ढूंढा नहीं उन्होंने। और क्या रिजल्ट क्या निकला? घड़ी गुम हो गई। लेकिन हमारा स्टाफ गया तो उसको सोफा पर घड़ी मिली। तो इसका मतलब क्या, जहां पर वो है वहां ढूंढेंगे तो वहां मिलेगी, जहां पर नहीं गिरी थी वहां लाइट है इसलिए ढूंढेंगे, ढूंढेंगे तो क्या बोलेंगे उसका, आप हंसेंगे उसको, केवल लाइट है इसलिए ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गिरी थी क्या? नहीं नहीं, हम लोग वहां डांस कर रहे थे तो इधर को ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार से दुनिया में बताया भगवान ने कि यहाँ पर खुशी नहीं है, लेकिन तुमको उधर ही ढूंढना है तो कभी भी नहीं मिलेगी आपको। इसे सुख का, सुख अगर आपको चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसकी पहली स्टेप क्या है मालूम है आपको? ज्ञान। और दुख का सबसे मूल कारण है अज्ञान, अविद्या। एक होता है अज्ञान, एक होती है अविद्या। अज्ञान का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अविद्या का मतलब क्या है? आपको पता है लेकिन वो पता है वो गलत है, उसको अविद्या कहते हैं। जैसे आपको लगता है कि मैं शरीर हूं, वो अविद्या है। आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं, वो अज्ञान है। लेकिन दोनों दुख दुखदाई है, ध्यान रखना इस बात। अज्ञान भी दुखदाई है, आपको पता नहीं है कि आपके बाजू में आम का पेड़ है और आप सब दुनिया में आम ढूंढ रहे हो, आपके आंगन में ही आम का पेड़ है, आपको पता नहीं था, वो भी दुखदाई है। और आपके आंगन में पेड़ है लेकिन आपको पता लगता है कि वो नारियल का पेड़ है, पेड़ है लेकिन आपको मालूम नहीं कि आम का है वो। आप सब जगह आम ढूंढ रहे हैं लेकिन आपका बाजू में आम का पेड़ होते आपको लग रहा है कि वो नारियल का पेड़ है। दोनों तरफ से दुखी हो। तो तब दुख की जड़ जो है ना वो अज्ञान और अविद्या है। और इस अज्ञान और अविद्या के कारण हमारे मन में वासनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे आप समझते हो कि मैं शरीर हूं तो शरीर की इच्छाएं प्रकट हो जाती है, खाना पीना है, सोना है, कुछ करना है, एक्टिविटी करना है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं शरीर हूं तो शरीर के सर पर जो भी है वही आनंद है, तो मुझे मिलना चाहिए वो, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों का हमारा जो ज्ञान है वो आधारित है कि मैं शरीर हूँ, इस पर आपको पता है, यही पता है आपको, उसके ऊपर पता नहीं आपको, तो आपकी पूरी दुनिया वही है। और जब वासना निर्माण होती है भोग की, तो उसके बाद में दुख पैदा होता है। जैसे ही विषयों का संपर्क इंद्रियों से होता है, विषय विषय मतलब एंजॉयबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे ही विषयों का संपर्क इंद्रियों से होता है वहां से दुख का जन्म होता है। और विषयों का संपर्क इंद्रियों से क्यों होता है? वासना की वजह से होता है। वासना मतलब ये जरूर नहीं खाली सेक्सी वासना है, जलेबी भी आपका वासना है कि आपको जलेबी खाना है, या किसी को मुख्यमंत्री बनना है वो भी उसकी वासना है कि मुझे इलेक्शन जीतना है, मेरा गवर्नमेंट होना चाहिए, ये उसकी वासना है, वो उसका विषय है। किसी को नृत्य में, संगीत में और भाषण में और ड्रामा में, कला में आगे बढ़ना है तो वो उसका विषय है। तो ये विषय वासना उत्पन्न होती है अज्ञान की वजह से। और जब अज्ञान का रूपांतर ज्ञान में होता है तो आदमी अगर समझो आपको पता चला कि अरे मेरे पीछे तो पेड़ नारियल का नहीं है, वो आम का पेड़ है, आपको पता चल गया है, फिर भी आप मार्केट में ढूंढ रहे हो आम, इसका मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त होने पर दुख की निवृत्ति नहीं होती है, दुख की निवृत्ति ज्ञान के ऊपर अमल करने से होती है। आपको पता चला कि आप आत्मा हो और शरीर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप शरीर के सर पर ही काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग सब लोग कर रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग सब डिवोटीज हैं, दीक्षा लिया हुआ है, नाम है हमारे पास, गुरु है, सेवा है, सब है, लेकिन फिर भी हमारा इंद्रिय भोग का इच्छा कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ज्ञान है ना, वो विज्ञान के रूप में उसका रूपांतर नहीं हुआ है, ज्ञान का रूपांतर एक्शन में नहीं हुआ है। जब ये ज्ञान हमारे अमल में उतरता है ना तो हमारी वासनाएं कम होने की संभावना है, और जो वो कम होगी तो आने वाला दुख कम होने की संभावना है। लेकिन ज्ञान है, उसको अमल करने में हम लोग फेल हो गए हैं, तो वासना वैसे रहती है, ज्ञान अपनी जगह पर रहता है, वासना अपनी जगह रहती है, और आने वाला दुख जो है वो चलते रहते हैं। तो सबसे पहला उनका उत्तर का सबसे पहला स्टेप है ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करना। नंबर टू उसका आंसर है कि ज्ञान के ऊपर अमल करना। आपको पता चला हुआ है कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, हाँ अच्छा है, आपने भी प्रवचन दिए हैं, आपने सुने भी है और आपने दिए भी है, तो आप नाम कभी करते नहीं हो, खाली प्रवचन करते हो, सबको सुना के आते हो, आपका सुन के वो लोग करते हैं लेकिन आप नहीं करते हो, तो आपका ज्ञान अपनी जगह पर रहेगा, अपनी वासनाएं भी अपनी जगह पर बढ़ती रहेगी आराम से। लेकिन आप जब अपने ज्ञान को जीवन में उतारेंगे तो उस ज्ञान के प्रभाव से और आपकी क्रिया के प्रभाव से, यानी कि साधना, उसकी क्रिया के प्रभाव से आपकी वासनाएं कम हो जाएंगी। जैसे आपकी वासना कम हो जाएंगी, दुख कम होने लगेंगे, और जैसे ही आपकी वासना कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएंगे, सुख का उदय होगा, आनंद का उदय होगा। तो शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, अभी आपका उत्तर और भी आएगा आगे। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण क्या है, हाँ, क्लेशाग्नि। क्लेश क्यों उत्पन्न होते हैं, वासना की वजह से। वासना क्यों उत्पन्न होती है, अज्ञान की वजह से। अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान पर अमल किया, तो सबसे पहले क्लेशाग्नि, दुख की समाप्ति होती है। दुख की समाप्ति का मतलब क्या है, दुख नष्ट हो गए, दुख कारक घटनाएं नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। दुख वाली घटना होती रहेगी जब तक दुनिया में आप रहो, जब तक आपका शरीर है तब दुख वाली घटना घटती रहेगी, आप मोड़े होते रहेंगे, बीमारी होती रहेगी, हादसे होते रहेंगे, कोई मरेगा, कोई जिएगा, एक्सीडेंट होगा, किसी का आग लगेगी, नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, ये सब जब तक दुनिया में आपको शरीर प्राप्त है तब तक होता रहेगा। तो फिर क्लेश करने का मतलब क्या हो गया, क्लेश आपको नहीं होगा उसका। पहले आपके पॉकेट में 100 रुपये गिर गया था, आप दिन भर रोए थे, अभी भी गिर गया तो आप अभी इस बार रोए नहीं, घटना तो सेम है। पहले आपको टाइफाइड हो गया था, आपने इतना रोए थे, अभी आपको कैंसर हो गया इस मालूम पड़ा, फिर भी आप शांत हो। क्लेश अग्नि का मतलब यह है, क्लेश अवेलेबल है लेकिन क्लेश आपके ऊपर परिणाम नहीं कर रहे। आपको गुस्सा दिलाने की स्थिति हो, कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। या आपके घर पत्नी का देहांत हो गया, तो 8 दिन तक सर पकड़ के रो सकते हैं आप, खाना पीना छोड़ के, या तो जो भी है शांत रह के आपका आगे का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, ऐसा मत समझना कि आप भक्त बनने के बाद में पत्थर दिल बन जाते हो, ऐसा नहीं है। बट विरक्ति भी होती है ना एक प्रकार की, अटैचमेंट कम हो जाती है, प्रेम होता है, उस व्यक्ति का दुख भी होता है जाने का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो दिन भर बैठा रहेगा, काम ही नहीं करेगा उसके बाद में, मैं मेरे काम पे भी जाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। श्यामा वल्लभ प्रभु का डेथ हो गया, सब लोगों ने शोक व्यक्त किया, सब लोग ने बहुत दुख व्यक्त किया, अभी भी दुख है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला कि अभी मैं आप भी काम पे ही नहीं जाऊँगा, मैं सेवा ही बंद करूँगा, अभी ड्यूटी वर्शिप करूँगा ही नहीं, नहीं कर सकता, उसकी डेथ की वजह से मेरा सब कुछ खो गया, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, ना बच्चों को देखूंगा, ना सेवा करूँगा भगवान की, कुछ भी नहीं करूँगा। नहीं, सब लोग अपनी सेवा में लगे हुए हैं, सब ने शोक व्यक्त किया, हृदय से शोक व्यक्त किया, लेकिन कोई सेवा छोड़ के गया नहीं। वो ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान होता है तो लोग दुख होने पर भी अपनी सेवा नहीं छोड़ते। अर्जुन के पुत्र का मृत्यु हो गया, वो ऐसा बोला नहीं अभी छुट्टी, अभी मैं कल युद्ध पे नहीं आऊँगा, रात भर रोया वो, नेक्स्ट डे वापस खड़ा हो गया, ऐसा नहीं बोला अभी मेरा ये इतना बड़ा दुख तो मैं झेल सकता नहीं हूँ, एक दिन तो मुझे आराम चाहिए, आप लोग युद्ध करो मैं आराम करूँगा, नहीं, युद्ध खत्म हुआ शाम को तो शाम से लेकर रात तक आराम दुख किया उसने, शोक व्यक्त किया, जो भी क्रोध व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, बहुत रोया, जैसे सूर्योदय हो गया वापस खड़ा हो गया युद्ध के लिए। ये लक्षण भक्त का है। तो सबसे पहले होता है क्लेशाग्नि, ज्ञान साधना करने से दुख के नाश होता है, उसके बाद में क्या होता है, शुभदा। शुभ भी कई प्रकार का होता है, एक शुभ में ऐश्वर्य आता है, धन दौलत कीर्ति मान सम्मान आता है, एक में बहुत सारा इंद्रिय भोग आता है, और एक में इसमें से कुछ भी नहीं आता है लेकिन भगवान का नाम आता है, उसका आनंद प्राप्त होने लगता है। उसके बाद क्या है? मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष लघु हो जाता है, मोक्ष को लघु बनाया जाता है। अब मोक्ष सबसे बड़ी बात है, लेकिन भक्ति का आनंद इतना दिव्य है कि मोक्ष वाला भी चीज जो है ना वो तुच्छ लगने लगता है। पहले आप एकदम गरीब थे तो आपको 1000 रुपया भी वो तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपका शादी भी ऐसे आदमी से हुआ है उसके पास में अब जो रुपए हैं तो आपके अभी 500 रुपये किधर गिर गए या किधर लूट लिए किसी ने या किधर चीटिंग हो गया, आपको ज़्यादा कॉस्ट ले लिया आपसे, तो पहले आप बहुत रोते थे, अभी आपका पति ही अब्जाधीश है, वो बोले क्या इतनी चिंता करते हो, आप जाके शायद 10,000 का खरीदी करके आओगे, बीच में 500 रुपये गिर गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भक्ति का आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि आपको लगता है मोक्ष के लिए इतना मैं तड़प रहा था, इतना तपस्या कर रहा था, अभी मोक्ष भी एकदम तुच्छ चीज़ है, इसके लिए मोक्ष लघु बन जाता है उसके सामने। किसकी वजह से? सांद्रानंद विशेषात्मा, इतना आनंद प्राप्त होता है कि मोक्ष भी जिसके लिए लोग तड़पते हैं ना, ब्रह्मानंद मुक्ति, एक ब्रह्मानंद होता है, आत्मा का आनंद होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है आदमी, उसको सब कुछ शून्य लगता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उसके लिए लोग तड़पते हैं, तपस्या करते हैं, क्या क्या कर, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, त्याग करते हैं, विरक्ति का अनुभव कर, सब कुछ करते हैं, और बाद में जब भक्ति का आनंद प्राप्त होता है ना तो वो भी उनको लगता है कितना तुच्छ है ये, इसके पीछे कौन जाएगा। उसके आगे क्या है? दुर्लभ, सुदुर्लभ, ये सब जो बताया जा रहा है वो बहुत दुर्लभ होता है, कोई बहुत आपको आमतौर पर मिलेगा नहीं, सब लोगों को पैसा चाहिए, योगी भी नीचे आता है पैसा लेके भ्रमित हो जाता है, योग करता है बहुत दिन तक, त्याग करके करता है, एक बार कभी संपर्क में आता है धन के फिर बह जाता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्त जो है ना वो भक्ति के आनंद का अनुभव करने के बाद में ना उसको धन प्रभावित करता है, ना उसको दुख प्रभावित करता है, ना दुनिया का रजोगुण प्रभावित करता है, ना उसको दुनिया की पॉलिटिक्स प्रभावित करता है, दुनिया का चीटिंग प्रभावित करता है, उसको दिए हुए कष्ट को उसको प्रभावित नहीं होता है वो, क्योंकि अपने आप में वो इतना आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हरिदास ठाकुर के सामने वो इतनी बड़ी माया देवी स्वयं आई थी उसको लुभाने के लिए, पहले तो वैश्या आई थी, वो दूसरी थी वो, उसके बाद स्वयं महामाया जो है ना वो ही आई थी उसको लुभाने के लिए, लेकिन वो जरा से भी नहीं ले। और विश्वामित्र मुनि भी 60,000 साल तप कर चुके थे और वो आई ने भी खाली घुंघरू का आवाज़ सुनाई पड़ा उसका, अभी आई देखा ऐसा कुछ नहीं, तो आँख बंद है अभी, कान में पड़ा आवाज, वो कान में आँख पड़ते आँख खुल गई, आँख खुलते ही दिखाई पड़े खत्म, क्योंकि वो विरक्ति में थे, भक्ति के आनंद में नहीं थे, वो तो उर्वशी थी, मेनका आई थी ऊपर से, मेनका उर्वशी नहीं मेनका आई थी, मेनका वो तो एक अप्सरा है, देवी है स्वर्ग की, ये तो सारी देवियां जो दुनिया में पड़ी हुई है स्वर्ग लोकों में बैठकर, उनका जो भ्रामक शक्ति है उसका स्रोत महामाया है, पार्वती देवी है, बहिरंगा शक्ति, वो साक्षात बहिरंगा शक्ति अपने पूरे चाम के साथ में आई थी। तो विश्वामित्र का चैलेंज बहुत कमजोर था, इनका चैलेंज बहुत मजबूत चैलेंज था, लेकिन विश्वामित्र उस कमजोर चैलेंज में हार गए, हरिदास ठाकुर जीत गए, महामाया भी शिष्य बनी उनकी, क्योंकि जो भगवान के साथ में आनंद में रत है उस पर दुनियादारी का परिणाम नहीं होता है, वो अपना अपना कर्तव्य करते रहता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किस चीज का, ये सब दुर्लभ है बहुत, ऐसा बता रहे हैं, ये सब ऐसा होना कि आप भक्ति में इतना रत हो कि आपको दुनिया की कोई चीज का परिणाम नहीं हो रहा, ये बहुत दुर्लभ है, ऐसे बता रहे हैं रूप गोस्वामी। और उसके आगे की बात क्या है? श्री कृष्ण आकर्षिणी, श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है, और दुनिया में भगवान को कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती है, आप योग करेंगे, आप तप करेंगे, आप त्याग करेंगे, आपके पास ज्ञान प्राप्त है बहुत सारा, आप इतना कर्मकांड में कुशल हो कि इतना सुंदर कर्म करते हैं आप, हाँ दान धर्म करते हैं आप, पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जन सेवा करते हैं, इसमें से किसी भी चीज से भगवान प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है, निरपेक्ष, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशूलनम, वो जो करता है उसको भगवान अपने आप को अर्पण कर देते हैं, अपने आप को उसके हवाले करके उसके अधीन हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके भगवान अधीन है, भगवान जिसको अपना चुके हैं, उस पर भी माया प्रभाव नहीं करती। तो हम लोगों को करना है तो केवल भक्ति करनी, और भक्ति करने से ही आप कमल जैसा जीवन जी सकते हो। कमल जैसा जीवन, ऐसा कीचड़ से ही पारा पोषण प्राप्त हो रहा है, कीचड़ में ही है लेकिन फिर भी कीचड़ से अलग है, यही आपको चाहिए ना। आपका आंसर क्या है कि आपको कमल की तरह जीना है, कैसे जिए, यही प्रश्न का दूसरा स्वरूप है पूछने का, कि हम सब लोग कमल की तरह कैसे जिए। कमल की तरह जीने का एक ही आंसर है कि भगवान के दिव्य चरण कमलों का आश्रय लेकर ही हम जी सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में लीन हो चुका है, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती, ना मोह माया छू सकती है, ना कोई इच्छा छू सकती है, ना कोई रजोगुण छू सकता है, ना तमोगुण छू सकता है, उसको कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो भगवान के चरण में। तो भगवान के चरण हम लेते नहीं हैं, इसलिए दुनिया हम पर प्रभाव करती रहती है, इसका पगार बढ़ा मेरा नहीं बढ़ा, उसका प्रमोशन हो गया मेरा नहीं हुआ। जब तक हम इन बातों में व्यस्त हैं ना, तब तक भक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है भक्ति। तुम आगे क्यों बैठे, दिखता नहीं क्या मैं पीछे बैठी हूँ, तो सड़क के नहीं बैठ सकते क्या, या बाथरूम में गए कितना देर अंदर बैठते हो, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, या मेरा कपड़ा इधर का उधर क्यों रखा। आश्रम में भी झगड़े होते हैं, क्या तुमने सबको जलेबी बनाया, मेरे लिए रखा नहीं, मैं देर से आया तो जलेबी खत्म, सब तुमने खा लिया। जब तक हम लोग इस प्रकार की चीज़ में अटके हुए ना, तब तक भक्ति भक्ति बहुत दूर है। ये बहुत तुच्छ बातों में जब लगे रहेंगे ना, तो वो भक्ति कैसे हो सकती है। कोई ऐसी महामाया आपको आकर्षित कर रही है, वो बात तो है ही नहीं। अब जलेबी लड्डू और कपड़े में अटके हुए हैं। हाँ, इसलिए संत का सहारा होना चाहिए। संत का सहारा होता है ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल चीजें आसान हो जाती है, आसान लगती भी आसान हो भी जाती है। संत का सहारा बहुत जरूरी है। एक संत का सहारा होने से ना, जैसे एक डॉक्टर कैसे अगर बहुत एक्सपर्ट होता है ना, तो आपका ढूंढ ढूंढ के ट्यूमर निकाल के फेंक देगा बाहर, प्रकष्ट होगा आपको, लेकिन उसको कला मालूम है कैसे आपका ट्यूमर कहाँ रोग आपका है उसको उठा के बाहर फेंक सकता है एक सर्जन की तरह। इससे संत का सहारा होना जरूरी है। एक संत का सहारा ये सारी चीजों की प्राप्ति आपको दे सकता है। इसलिए जीवन जो हमारा है वो संत के सहारे होना चाहिए और संत के आदेश को पालन करते हुए होना चाहिए। और जब ये दो बातें आप करेंगे और तीसरी बात वैष्णव का अपराध नहीं करेंगे, तो फिर ये सब आप ऐसे हो जाएंगे कमल की तरह, तब कमल की तरह जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। और दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया ऐसे ही रहेगी जैसा उसका वर्णन किया गया है, वो ऐसे ही रहेगी। आप भक्त बनो नहीं बनो, संत बनो नहीं बनो, दुनिया वैसी रहेगी। बदलना आपको है, कार्य आपको बदलने हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के?